एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका फिर से स्वागत है।
नमस्कार।
हम यहाँ जरूरी विचारों और किताबों की दुनिया में गोते लगाते हैं,
और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है।
हाँ, लेकिन जिसकी बातें आज भी मतलब बहुत रेलिवेंट है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जूलियस सीजर की लिखी किताब द गैलिक वॉर्स,
या लैटिन में कहें तो कमेंटरी डे बेलो गॉलिको।
नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई झगड़े का ब्यौरा होगा
कि कैसे रोमन सेना ने गॉल मतलब आज का फ्रांस और आसपास का इलाका जीता।
हाँ, लेकिन ये किताब उससे कहीं ज्यादा है। सच में
बिल्कुल, ये तो लीडरशिप स्ट्रेटजी, यहाँ तक कि जिसे हम आज पीआर कहते हैं ना,
हाँ, पब्लिक रिलेशंस,
उसका एक जबरदस्त केस स्टडी है।
सही कहा। ये हमें सिखाती है कि पावर कैसे काम करती है, कहानियां कैसे गढ़ी जाती हैं,
और क्यों ये आज भी इतनी जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है,
नहीं, ये तो इंसानी स्वभाव और राजकाज का आईना है एक तरह से।
तो चलिए शुरू करते हैं इसके लेखक से, गायुस जूलियस सीजर।
रोमन इतिहास का शायद सबसे सबसे मशहूर नाम, 100 से 44 ईसा पूर्व।
और सीजर सिर्फ एक सेनापति ही नहीं थे ना?
बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत ही चतुर राजनेता थे, एक कमाल के वक्ता और लेखक भी।
उन्होंने रोम की राजनीति में मतलब धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, क्वेस्टर से शुरू करके कौंसल तक पहुंचे,
हर पायदान पर अपनी छाप छोड़ी।
दिलचस्प बात ये है, और ये बहुत जरूरी है, कि गैलिक वॉर्स लिखते समय सीजर का रोल डबल था।
हाँ, वो गॉल में कमांडर इन चीफ थे रोमन सेना के,
और साथ ही साथ इन घटनाओं को लिख भी रहे थे।
सोचिए, जो मैदान में लड़ रहा है वही कलम से इतिहास भी लिख रहा है।
इससे उनके लिखे में एक आंखों देखी सच्चाई तो आती है, पर
हाँ, लेकिन एक खतरा भी है, पक्षपात का, बायस का।
जाहिर है वो घटनाओं को अपने नजरिए से पेश करेंगे, अपने फायदे के हिसाब से,
और उन्होंने किया भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कमाल यह है कि उनके जमाने के और कई बार उनके विरोधी भी रहे, जैसे सिसरो।
हाँ, मशहूर वक्ता सिसरो।
उन्होंने भी सीजर की लिखने की स्टाइल की तारीफ की थी, कहा था कि एकदम साफ, सीधी और असरदार है।
वाकई सीजर के जो बैकग्राउंड थी, सेना का अनुभव, राजनीति की समझ और लिखने का हुनर, ये सब मिलकर उन्हें इस काम के लिए एकदम परफेक्ट बनाते थे।
बिल्कुल, उन्हें पता था कि रोम में सीनेट और जनता उनके कामों को कैसे देखेगी, इसलिए कहानी बहुत सोच समझ कर लिखी गई।
चलिए अब किताब पर आते हैं, द गैलिक वॉर्स। ये है क्या असल में?
ये सीजर का उन सैनिक अभियानों का लेखा जोखा है जो उन्होंने 58 से 50 ईसा पूर्व के बीच गॉल में चलाए थे।
8 किताबों में, या कह लें हिस्सों में बंटी हैं।
हाँ, हर साल की घटनाओं का जिक्र है।
और इसका मकसद सिर्फ घटनाओं को रिकॉर्ड करना तो नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके दोहरे मकसद थे।
पहला तो जाहिर है 8 साल के लंबे मुश्किल अभियानों का ब्यौरा देना।
कैसे रोमन साम्राज्य अटलांटिक तक फैला, लाखों लोग रोमन राज में आए, रोम को कितनी दौलत मिली, ये सब।
लेकिन दूसरा मकसद शायद ज्यादा अहम था, क्यों?
हाँ, वो था राजनीतिक प्रचार, प्रोपेगेंडा।
सीजर इसे रोम में अपनी इमेज चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे,
अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हवा देने के लिए।
वो दिखाना चाहते थे कि देखो मैं रोम के लिए कितना जरूरी हूँ।
बिल्कुल, और किताब का एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं मिलती।
हाँ, इसके लिए आपको लोकल पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए,
सही वक्त पर सही चाल चलनी आनी चाहिए,
और सबसे बढ़कर अपनी चढ़ाई को, अपने हमलों को रक्षा या जरूरत का जामा पहनाना आना चाहिए।
एग्जैक्टली, सीजर बार बार जोर देते हैं कि उनके अभियान आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक थे।
हाँ, वो कहते हैं कि या तो वो रोमन दोस्तों की मदद कर रहे थे,
या रोम की सरहदों पर जो खतरे मंडरा रहे थे उनको रोक रहे थे।
ये अपनी कार्रवाई को नैतिक रूप से सही ठहराने की एक क्लासिक रणनीति है।
हाँ,
आज भी चलती है।
और पढ़ने वाले कौन थे? मेनली रोम के एलीट लोग, सेनेटर, अमीर नागरिक,
जिनके सपोर्ट पर सीजर का भविष्य टिका था।
हाँ, पर भाषा इतनी सीधी और साफ थी कि आम पढ़ा लिखा रोमन भी इसे समझ सकता था।
और आज हम इसे कैसे देखते हैं? इतिहास के सोर्स के तौर पर भी और साहित्य के तौर पर भी।
तो ठीक है, अब जरा इन 8 सालों के सफर पर चलें। किताब 8 हिस्सों में है।
हाँ, पहले 7 खुद सीजर ने लिखे और 8वां?
8वां उनके एक लेफ्टिनेंट ऑलस सेनिटियस ने लिखा। थोड़ा स्टाइल अलग है उसका।
ओके, तो हर हिस्सा 1 साल के कैंपेन पर फोकस करता है।
शुरुआत होती है पुस्तक 1 58 ईसा पूर्व से, और इसकी पहली लाइन,
अरे हाँ, सारा गॉल 3 हिस्सों में बटा है।
गैलिया एस्ट ओमनिस डिफाइजा इन पार्टिस त्रिस, इतिहास की सबसे मशहूर लाइनों में से एक। बिल्कुल, ये लाइन सिर्फ भूगोल नहीं बताती, ये सीजर का कॉन्फिडेंस दिखाती है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं यहाँ का एक्सपर्ट हूँ।
इसी पहले किताब में वो हेल्वेटी जनजाति के माइग्रेशन को खतरा बताकर उन पर हमला करते हैं।
हाँ, और उन्हें हराते हैं। फिर जर्मन सरदार एरियोविस्टस के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं,
ये कहकर कि गॉल की कुछ जनजातियों ने मदद मांगी है।
हर कदम को जरूरत बताकर पेश किया गया है। यहाँ सीजर की निर्णायक क्षमता और अपने कामों को सही ठहराने की कला साफ दिखती है।
फिर आती है पुस्तक 2, 57 ईसा पूर्व। इसमें वो उत्तर की ताकतवर बेल्जिक जनजातियों से निपटते हैं,
जिन्हें वो खुद सबसे बहादुर गॉल कहते हैं।
यहाँ उनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प है। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं
और फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाते हैं।
सामरे नदी पर नीरवी जनजाति से जो लड़ाई हुई वो तो बहुत भयानक थी,
हाँ, रोमन सेना लगभग हारी गई थी।
और सीजर यहाँ खुद को एक हीरो की तरह दिखाते हैं, मुश्किल हालात में सेना का हौसला बढ़ाते हुए।
वो अपनी पर्सनल प्रेजेंस को बहुत महत्व देते थे संकट के पलों में।
पुस्तक 3, 56 ईसा पूर्व थोड़ी अलग है। इसमें अटलांटिक तट पर नौसैनिक युद्ध का जिक्र है विनयती जनजाति के खिलाफ।
हाँ, ये दिखाता है कि रोमन सेना सिर्फ जमीन पर नहीं समंदर पर भी लड़ सकती थी।
उन्होंने खास तरह के जहाज बनाए, नई तकनीकें ईजाद की, जैसे वो लंबे हुक वाले डंडे।
ये रोमन इंजीनियरिंग और अडेप्टेबिलिटी का सबूत है।
फिर आती है पुस्तक 4, 55-54 ईसा पूर्व, और यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं।
हाँ, यहाँ सीजर दो ऐसे काम करते हैं जो सैन्य जरूरत से ज्यादा शायद दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए थे।
पहला, 10 दिन में राइन नदी पर लकड़ी का एक शानदार पुल बनाना,
और सेना को जर्मनी में ले जाना। ये रोमन इंजीनियरिंग का कमाल था, जर्मन कबीलों को डराने का एक तरीका भी था।
और दूसरा, उसी साल ब्रिटेन पर पहला हमला।
हाँ, रोमन सेना पहली बार उस अनजान द्वीप पर पहुंची।
भले ही ये हमला मिलिट्री लिहाज से बहुत कामयाब ना रहा हो,
पर रोम में इसका प्रचार मूल्य जबरदस्त था। सीजर ने रोमन झंडा दुनिया के छोर तक पहुंचा दिया। ये पीआर का मास्टर स्ट्रोक था।
लेकिन पुस्तक 5, 54-53 ईसा पूर्व में मामला थोड़ा बिगड़ता है।
हाँ, ब्रिटेन पर दूसरा बड़ा हमला तो होता है, पर गॉल में वापसी पर बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ता है।
फसल की कमी का फायदा उठाकर एम्बियोरिक्स नाम का एक लीडर धोखे से एक पूरी रोमन लीजन को खत्म कर देता है।
ये सीजर के लिए बहुत बड़ा झटका था।
बिल्कुल, और जब क्विंटस सिसरो, जो मशहूर वक्ता के भाई थे, उनकी लीजन भी घिर जाती है,
तब सीजर अपनी मशहूर तेजी दिखाते हैं, जिसे वो सेलेरिटस कहते हैं, मतलब बिजली की सी फुर्ती।
वो तेजी से मार्च करके सिसरो को बचा लेते हैं।
ये हिस्सा रोमन कमजोरी को भी दिखाता है और सीजर की संकट से उभरने की क्षमता को भी। वो हार को भी अपनी कहानी में फिट कर लेते हैं।
पुस्तक 6, 53 ईसा पूर्व में सीजर विद्रोहियों को सजा देने और जर्मन जनजातियों को डराने के लिए फिर राइन पार करते हैं।
लेकिन इस किताब का सबसे खास हिस्सा है गॉल और जर्मन लोगों के रीति रिवाजों, उनके समाज और धर्म का डिटेल्ड वर्णन।
हाँ, यहाँ वो एक तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह लिखते हैं।
पर ये वर्णन जानकारी देने के साथ साथ एक और काम करता है।
क्या?
ये रोमन पाठकों को दिखाता है कि ये लोग कितने असभ्य हैं, जैसे मानो बलि का जिक्र और रोमन शासन उनके लिए कितना जरूरी है।
अच्छा, मतलब रोमन सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित करने का एक सूक्ष्म तरीका।
बिल्कुल।
और फिर आता है क्लाइमैक्स, पुस्तक 7, 52 ईसा पूर्व।
हाँ, गॉल की लगभग सारी जनजातियाँ वेरिसिनजिटोरिक्स नाम के करिश्माई लीडर के नेतृत्व में एक हो जाती हैं।
ये सीजर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।
वेरिसिनजिटोरिक्स स्कॉच्ड अर्थ की नीति अपनाता है, अपनी फसलें और गांव जला देना ताकि रोमन सेना को रसद न मिले।
वो गैरगोविया में सीजर को एक लड़ाई में पीछे हटने पर मजबूर भी कर देता है।
लेकिन निर्णायक लड़ाई होती है अलेसिया की घेराबंदी में।
सीजर वेरिसिनजिटोरिक्स और उसकी विशाल सेना को अलेसिया शहर में घेर लेते हैं।
और जब गॉल की एक और बड़ी सेना उनकी मदद के लिए आती है, तो सीजर इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना पेश करते हैं।
हाँ, वो दोहरी दीवारें।
बिल्कुल, एक अंदर दुश्मन को रोकने के लिए, दूसरी बाहर से आने वाली मदद को रोकने के लिए। आज भी वो हैरान करती हैं।
अंत में रोम की जीत होती है और वेरिसिनजिटोरिक्स का आत्मसमर्पण इस पूरे युद्ध का नाटकीय अंत होता है।
आखिरी किताब पुस्तक 8, 51-50 ईसा पूर्व, जैसा हमने कहा, हिर्टियस ने लिखी।
इसमें बचे खुचे विद्रोहों को दबाने और गॉल में शांति स्थापित करने का जिक्र है।
हिर्टियस खासतौर पर सीजर की क्लेमेंशिया, यानी हारे हुए दुश्मनों के प्रति दिखाई गई दया पर जोर देते हैं।
ये रोम में सीजर की इमेज के लिए जरूरी था, क्योंकि उन पर क्रूरता के आरोप भी लग रहे थे।
हाँ, और ये किताब गृह युद्ध की आहट भी देती है। रोम में टेंशन बढ़ रही थी।
तो इन 8 किताबों की यात्रा से कुछ बड़े संदेश या थीम्स उभर कर आते हैं।
हाँ, सीजर सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो खास बातें मनवाना चाह रहे थे।
पहला तो वही जरूरत बनाम हमलावर वाला।
बिल्कुल, सीजर हमेशा खुद को डिफेंडर के तौर पर पेश करते हैं। हर लड़ाई किसी खतरे की प्रतिक्रिया थी या किसी दोस्त की मदद थी।
ये अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पर्दा डालने का एक तरीका था।
दूसरा, रोमन सैन्य और इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता।
हाँ, पूरी किताब में रोमन सेना के अनुशासन, उनकी स्ट्रैटेजी और खासकर उनकी इंजीनियरिंग का गुणगान है। पुल, किलेबंदी, घेराबंदी की मशीनें,
इसे गॉल योद्धाओं की बहादुरी लेकिन बिखरी हुई ताकत के सामने रखा गया है।
तीसरा थीम है नेतृत्व और वफादारी का।
हाँ, सीजर खुद को ऐसे लीडर के तौर पर दिखाते हैं जो मिसाल कायम करता है, अपने सैनिकों के साथ दुख सुख बांटता है,
और इसी वजह से सैनिक उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। वो संकट में अपनी मौजूदगी पर बहुत जोर देते हैं।
आज के लीडर्स भी इससे सीख सकते हैं ना?
बिल्कुल।
चौथा है सांस्कृतिक टकराव और बदलाव। ये किताब सिर्फ जीत की कहानी नहीं, दो संस्कृतियों के मिलने की भी कहानी है।
सीजर गॉल के रीति रिवाजों में दिलचस्पी दिखाते हैं, भले ही अंत में रोमन संस्कृति को बेहतर साबित करें।
और वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे गॉल के लोग रोमन तौर तरीके अपना रहे हैं। एक तरह से ये रोमन सिविलाइजिंग मिशन का जस्टिफिकेशन है।
और पांचवां, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है खुफिया जानकारी और कूटनीति का महत्व।
हाँ, सीजर सिर्फ लड़ाई पे निर्भर नहीं रहते हैं, वो जासूसों का जाल बिछाते हैं, दुश्मन कबीलों में फूट डालते हैं, बातचीत का इस्तेमाल भी करते हैं।
जीत सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है।
इस किताब की कुछ बातें या विचार इतने सटीक हैं कि वो कहावतें बन गए हैं या सीजर की सोच को बिल्कुल साफ कर देते हैं।
जैसे वो पहली लाइन, सारा गॉल 3 हिस्सों में बटा है।
ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये सीजर का ऐलान है कि मैं इस जगह को समझता हूँ, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये व्यवस्था और विश्लेषण का प्रतीक है।
और वो मशहूर वाक्या, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया,
विनी विदी विंची।
हालांकि ये गालिक वॉर्स का नहीं, एक दूसरे अभियान का है, पर ये उस तेजी और निर्णायकता को दिखाता है जिसे सीजर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। एकदम ब्रीफ, कॉन्फिडेंट।
एक और विचार जो बार बार आता है वो ये कि हमेशा खतरे के डर में जीने से बेहतर है कि एक बार मुसीबत का सामना कर लिया जाए।
ये उनके अचानक किए गए हमलों को सही ठहराने का तरीका था कि इंतजार करना ज्यादा खतरनाक होता।
और पासा फेंका जा चुका है।
आलिया इक्तिस्तात।
ये भी सीधे तौर पर गॉल युद्ध से नहीं जुड़ा, ये रुबिकॉन नदी पार करते हुए कहा गया था।
लेकिन ये उस भावना को पकड़ता है जो सीजर अपनी किताब में दिखाना चाहते हैं कि उनके कदम ऐतिहासिक रूप से जरूरी थे, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं।
एक और दिलचस्प बात जो सीजर कहते हैं, मतलब उसका सार ये है कि युद्ध में बड़ी घटनाएं अक्सर छोटी छोटी बातों का नतीजा होती हैं।
ये दिखाता है कि वो बारीकियों पर कितना ध्यान देते थे, कैसे एक अच्छा कमांडर छोटी चीजों के बड़े असर को समझता है।
तो सवाल ये है कि 2000 साल पुरानी एक सेनापति की लिखी इस किताब से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ हिस्ट्री बफ्स के लिए है?
मुझे तो लगता है इसमें आज के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे लीडरशिप और मैनेजमेंट में।
हाँ, संकट के समय सामने आकर लीड करना, विजिबल लीडरशिप,
अपनी टीम के साथ रिस्क उठाना, साफ साफ बात करना और लोगों को इंस्पायर करना।
सीजर ने ये सब किया या कम से कम अपनी किताब में ऐसा दिखाया तो जरूर है।
और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और PR।
अरे, इस किताब तो इसका टेक्स्ट बुक उदाहरण है।
अपनी कहानी कैसे कहनी है, अपने कामों को कैसे सही ठहराना है, मुश्किल सवालों से कैसे बचना है।
कॉर्पोरेट दुनिया हो या राजनीति, ये आज भी उतना ही सच है। सीजर अपनी ब्रांडिंग में माहिर थे।
कंपटीशन को समझना भी एक अहम सीख है।
बिल्कुल, सीजर ने गॉल की जनजातियों की अंदरूनी राजनीति, उनकी कमजोरियों को समझा और उसका फायदा उठाया।
किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना जरूरी है।
संकट प्रबंधन और लचीलापन भी।
हाँ, सीजर ने हार का सामना किया, जैसे गर्गोविया में, लेकिन उन्होंने उससे सीखा और एलिजिया में वापसी की।
गलतियों से सीखना और अपनी स्ट्रैटेजी को हालात के हिसाब से बदलना, ये हमेशा काम आता है।
और एक थोड़ी अनपेक्षित सीख सांस्कृतिक समझ की भी हो सकती है।
हाँ, भले ही सीजर का मकसद जीतना था, लेकिन उन्होंने लोकल कस्टम्स और पावर इक्वेशंस को समझने की कोशिश की।
आज की ग्लोबल दुनिया में अलग अलग कल्चर्स के साथ काम करते हुए ये समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, एक तरह से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी उदाहरण है।
इतने बड़े पैमाने पर सेनाओं को चलाना, लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना, अलग अलग मोर्चों पर कोऑर्डिनेशन, आसान नहीं था ये सब।
अगर मुझसे पूछें कि इस किताब से सबसे बड़ी टेकअवे क्या है, तो मैं कहूंगा कि सफल लीडरशिप किसी एक चीज से नहीं आती।
हाँ, ये मिक्सचर है।
ये मिक्सचर है,
ये स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों को समझने की क्षमता और अपनी बात कहने की कला, इन सब का मिश्रण है। सीजर इन सब में माहिर थे।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है पावर और नैरेटिव का रिश्ता, ताकत और कहानी का।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
सीजर ने समझा कि सिर्फ जीतना काफी नहीं है, अपनी जीत की कहानी को भी कंट्रोल करना जरूरी है।
इतिहास वही होता है जो लिखा जाता है, और सीजर ने अपना इतिहास खुद लिखा और खूब लिखा।
ये बात आज के नैरेटिव वॉर्स के जमाने में बहुत ज्यादा मायने रखती है।
और ये किताब ये भी याद दिलाती है कि एक व्यक्ति के फैसले उसका कैरेक्टर, इतिहास का रुख कैसे मोड़ सकते हैं।
हाँ, सीजर के अभियानों ने यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।
ये दिखाता है कि लीडरशिप की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।